अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की। स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी। अमर कहानी शांति की क्रांति इस धरती पर लाई, बदलेगा इतिहास विश्व का ये धरती ने अंगड़ाई। लेकर झंडा हाथ में शिव का लगा विश्व कल्याण में, लगा दिया तन मन धन अपना मानव के उत्थान में। हो संसार परिवर्तन अब, हो संसार परिवर्तन अब, कली कली अब मुस्काएगी। अमर कहानी ब्रह्मा को नया मोड़ दिया। जाति भेद और धर्मों के बंधन सारे तोड़ दिए। करते जो दूर ईश्वर से उन राहों को छोड़ दिया। हम हैं एक पिता के बच्चे, प्यारा रिश्ता जोड़ दिया। दी है कुर्बानी जिन्होंने, दी है कुर्बानी जिन्होंने, सबके जुबान पर आएगी अमर कहानी। फिर से उठाया है, नारी स्वर्ग का द्वार है, सबको ये समझाया है। विश्व एकता लाने को ली शिव शक्ति का अवतार। ओम शांति के मंत्र से फिर ये सब संसार, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी नवयुग फिर से लाएगी। अमर कहानी ब्रह्मा की स्वर्णिम दुनिया लाएगी, स्वर्णिम दुनिया लाएगी। उनकी त्याग तपस्या सेवा, उनकी त्याग तपस्या सेवा शिव की झलक दिखाएगी अमर कहानी ब्रह्मा की, अमर कहानी ब्रह्मा की।
ओम शांति। बाबा को अनेक प्रकार के साक्षात्कार हुए। शिव बाबा का अवतरण ब्रह्मातन में हुआ। धीरे धीरे दादा सभी बातों से, सभी कारोबारों से अपने आप को समेटने लगे और अंतर्मुखता के तरफ जाने लगे। अब दादा ने कई दिनों से बाहर घूमने जाना भी बंद कर दिया था। घर में सभी छोटे बड़े सदस्य बैठकर दादा जो आत्मा का ज्ञान देते वो सुनते थे। इस आत्मज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते ही मन में उसकी धारणा हो जाती थी। थोड़े ही दिनों में दादा के दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतर आत्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर दादा को गीता में अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसीलिए वे गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव कल पहले की तरह जगाने के लिए स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाले सतयुगी दैवी दुनिया की दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब दादा के मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं और पुरुष भी आने लगे। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में से एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मिणी था। वे हैदराबाद में एक बहुत बड़े घर की बहू मानी जाती थी। उनका ससुर वहां के विशिष्ट अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माना जाता था, लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी और इस कारण से वो बहुत ही दुखी और अशांत रहती थी। अचानक ही दादा के सत्संग की महिमा सुनकर जब वो दादा के पास पहुंची तो उस पर दादा के प्रवचनों का और दादा की अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वो भी अपने स्वजनों और संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास कोई गुप्त शक्ति है, उनके वचनों में अमृत बरसता है जो हृदय एक अलौकिक शीतलता देता है। उनका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है, उनकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। वे गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था वो भी उनके साथ सत्संग में आने लगी। गोपी आगे जाकर के बड़ी दीदी के रूप में स्नेहयुक्त नाम से प्रसिद्ध हुई तथा दादी प्रकाशमणि जी के साथ ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य कार्यवाहिका रही। ओम बाबा के सम्मुख जाने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वो बाबा के तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको बाबा के माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वे कई बार देह की सुध भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान गोपी समझते थे। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेक अनेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों बाबा जो ज्ञान देते थे और उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक हृदय पुष्प दादी ने इस प्रकार दी है। हृदय पुष्प दादी चंद्रमणि दादी के बड़ी बहन, जो बैंगलोर में सबसे पहले साउथ में जाकर के बैंगलोर में सेवा केंद्र खोले और साउथ के सभी स्टेट्स में उन्होंने अपनी सेवा दी। तो हृदय पुष्प दादी अपना अनुभव बताते हैं, बचपन से ही मेरा ये संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में से किसी की शादी की सूचना मिलती तो मुझे बहुत दुख सा अनुभव होता था। शादी से मुझे घृणा थी, मुझे इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, परंतु जैसे जैसे मेरे अपनी शादी के दिन निकट आते जा रहे थे मैं रोती रहती थी। शायद मेरी अंतरात्मा निर्विकारी जीवन की तीव्र चाह थी। आखिर जब मेरे विवाह का समय आ पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु का दिन आ गया है। मेरा विवाह तो हो गया परंतु पति के प्रति मेरी दृष्टि में वासना भाव रंच मात्र भी नहीं था। पति बीमार रहते थे और मैं एक नर्स की भांति उनकी देखभाल तथा सेवा करती थी, परंतु मेरे मन में कभी भी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह के 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी ये दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी परंतु अब लोग मुझे विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने 17 वर्ष की तरुणावस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी मेरे माता पिता के मन में बहुत था। माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। हमारा कुल एक धनी मानी कुल था, इसीलिए हमारे दुख की दास्ता हैदराबाद में काफी लोगों तक पहुंच चुकी थी। स्वयं बाबा ने भी हमारी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि ओम बाबा के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। ये बात मेरे कान तक भी पहुंची। मैं दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर जा पहुंची। बाबा के व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और उनके सम्मुख जाने से अपरम अपार सुख महसूस हो रहा था। बाबा ने मुझसे पूछा, आप कौन हो, जानती हो आप कौन हो? फिर मैंने कहा, मैं तो एक दुखी इंसान हूं। फिर बाबा ने पूछा, अच्छा बताओ, संसार दुख रूप है या सुख रूप है? फिर मैंने कहा, बहुत दुख रूप है। बाबा ने कहा, अच्छा बैठो। मुझे सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसकी भ्रुकुटी में आत्मा अंकित की। उस चित्र पर उन्होंने मुझे समझाया कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शरीर नश्वर है और आत्मा का जो निजी गुण है वो शांति, आनंद, प्रेम और सुख है। ऐसे सुनते सुनते मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच मैंने देखा कि आत्मा बिंदु रूप है और वो ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। मैं लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद होकर बैठ गई थी। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? मैंने कहा, मैं एक आत्मा हूं। बाबा ने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? फिर मैंने कहा, मैं तो शांत स्वरूप, सुख स्वरूप आत्मा हूं। मेरे जैसा सुखी इस दुनिया में कोई नहीं है। बाबा ने पूछा, संसार दुख स्वरूप है या सुख स्वरूप? फिर मैंने कहा, सुख स्वरूप है। तब बाबा ने कहा, अच्छा आज का पाठ पक्का करना और फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। मैं जब बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रो करके आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। मेरी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। मुझे एक अलौकिक नशा सा था। मैंने घर में जाकर अपनी दुखी माता को ये ज्ञान वार्तालाप सुनाया। माताजी को ये बातें बहुत अच्छी लगी। वे मुझसे कहा करती थी, तुम प्रतिदिन जाकर ज्ञान सुनकर आओ और मुझे सुनाओ। मैंने एक दिन बाबा को स्वयं ही अपने लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा, अच्छा मैं अपने पास उनके पास चलता हूं। बस उसी घड़ी दयालु बाबा हमारे साथ चले हमारी दुखी माता को शांत करने। हम वहां पहुंचे, मेरे लौकिक माता बाबा को देखते ही एक सेकंड में देहभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं उभर आई और वे हाथ जोड़े बैठे ध्यान मग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर बाबा ने उन्हें भी ज्ञानामृत पिलाया और शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेक नर नारियों को भी यहां मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन दिनों सिंध में ये रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाए तो माताएं मिट्टी से सने हुए मैले कुचेले कपड़े पहनती थी, वे सियापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था, परंतु बाबा का ज्ञान सुनने से उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और असुरी मर्यादाएं अथवा कुरुति कुरुतियों को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचेले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वो आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेक अनेक माताओं के जीवन में इस प्रकार की कहीं सुधार हुई। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन बहुत करती थी, कहीं तो जेवरों से लदी रहती थी। अन्य बहुत से लोग जीभ के स्वाद के वशीभूत थे। धनाढ्य लोगों के घर में नौकरी खाना बनाते तथा और सब कार्य वही करते। परंतु अब जो कन्याएं माताएं ओम मंडली के संपर्क में आई थी, उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना ये सब छोड़ दिया था और वे घर का सब कामकाज भी अपने हाथों से ही करने लगी थी। अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्मेंद्रियों पर वश करने की शिक्षा मिलती थी। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में, लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना जागृत हुई, क्योंकि वो सोचते थे कि शताब्दियों से चली आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि अन्य कोई नहीं तोड़ सका, ओम मंडली ने और ओम बाबा ने माताओं को उन सभी से मुक्त किया। ओम मंडली की ये वो ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी लोग अपनी बहु बेटियां और माताएं कन्याओं को सत्संग में भेजने लगी। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी थी, जिनका नाम राधे था। वे बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वे अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और बाबा से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से दैवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर आकर साकार हुई है। वे बहुत सी शिष्ट प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपने स्कूल में सदैव प्रथम श्रेणी प्राप्त किया करती थी। वे वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने बाबा के मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित बहुत से आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुए, इसलिए शीघ्र ही अपने जीवन के बारे में यह निर्णय किया कि वे आजीव ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देगी। जब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार दादा की लौकिक पत्नी जसोदा को साक्षात्कार हुआ था कि श्री राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेगी और मैं उनको राज्य भाग्य दूंगी। परंतु इसका अर्थ वे नहीं समझ सकती थी। अब जब वो ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पार्ट है और आने वाले सतयुगी सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वो बाबा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वे ऐसी अच्छी तरह से समझाती कि सभी को बहुत हर्ष होता। अब जैसे और लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभान्वित हो रहे थे, वैसे ही दादा अपने लौकिक संबंधियों को भी ज्ञान के रंग में रंगने के लिए प्रयत्नशील थे, क्योंकि दादा को इसमें विश्वास था कि चैरिटी बिगिंस एट होम। दादा की धर्म पत्नी और बहू दोनों ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं को आत्मनिष्ठ बनाने के पुरुषार्थ में तत्पर थी। इसीलिए अब दादा का ध्यान विशेष तौर पर अपनी बड़ी पुत्री पालू मना निर्मल शांता दादी की ओर गया था। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त होने से पहले वाले जीवन काल में दादा ने उस पुत्री की शादी सिंध के एक बहुत ही नामवर और धनाढ्य मुखी घराने में की थी। और दादी कहते हैं, मेरे ससुराल में सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी, मैं उन्हीं सुखों में ही मस रहती थी। मुझे भक्ति पूजा की ओर कोई विशेष खिंचाव नहीं महसूस होता था, परंतु जब पिताश्री में परमपिता परमात्मा शिव की प्रवेशता हुई, तो मैंने देखा कि अब बाबा का हमारी ओर पहले जैसे लगाव और ध्यान नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि अब हमारे बाबा एक अलौकिक मस्ती में मस्त रहते थे और हमारे लिए तो एक विरक्त साधु ही बन गए थे। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता पिता से मिलती तो वे दोनों मुझे ज्ञान ही सुनाते। अब मैं जब भी अपने लौकिक माता से मिलते वही बातें सुनते और सुनाते और ज्ञान की ओर मुझे खींचते। उनके मन में मेरे कल्याण की भावना थी। वे सोचते थे कि ये भी ईश्वरीय मार्ग पर चल पड़े, ये क्यों ईश्वरीय आनंद से वंचित रहे। आखिर एक दिन उनकी इस शुभ भावना की विजय हुई। उस दिन कोई त्योहार था और बाबा ने मुझे भोजन के लिए घर बुलाया था। जब मैं वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां कुछ माताएं कन्याएं आदि ज्ञान सुना रही थी और उनमें से कुछ एक ध्यान अवस्था में रास कर रही थी। वो रास पहले तो मुझे अच्छी नहीं लगी, परंतु मैंने देखा कि जो महिलाएं रास कर रही थी उन सभी से मैं अच्छी तरह परिचित थी। रास करने वाली माताओं को और उनके अद्भुत रास को देखकर मेरे मन में ये संकल्प आया कि जिस प्रकार की दिव्य रास ये समय कर रही हैं, ये तो कोई इस कला का विशेषज्ञ भी शायद नहीं कर सकेंगे। ये माताएं जिन्होंने कभी ऐसे रंग ढंग सीखा ही नहीं, इसे इस अलौकिक रीति से कैसे कर पा रही हैं? हो ना हो, इस समय इस संसार के भान में नहीं है और दिव्य चक्षु द्वारा श्री कृष्ण और देवलोक की कोई रास देखते हुए उसी तन्मयता के साथ रास कर रही हैं। उनके मुख पर भी शांति, प्रभु प्रेम तथा सात्विकता की ऐसी रेखाएं दिख रही थी। जब वे ध्यान अवस्था से कुछ नीचे उतरी तो मैंने उनका अनुभव सुनने की इच्छा प्रकट की। उनमें से जब एक को मैंने निवेदन किया तो देखा कि अब तक वो उसी मस्ती में थी और उस सुख का रसास्वाद करते हुए वाणी में नहीं लौटना चाह रही थी। उन्होंने धीमी सी आवाज में केवल इतना कहा, कल बताऊंगी। मुझे उसका अनुभव सुनने की इच्छा थी, इसीलिए जाते समय मैं बाबा को कहा, बाबा कल कार भेज दीजिए, मैं आऊंगी जरूर। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, कल देखा जाएगा। मुझे ये उत्तर अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा, बाबा आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्ची अपना विचार तो कार भेजने का ही है, परंतु बच्ची देखे कल क्या होता है। मैं बहुत नाज़ोन से पली थी, कभी मैंने बाबा के मुख से ऐसा उत्तर नहीं सुना था। अज्ञानता के नशे में मुझे बहुत क्रोध आया, मुझे लगा कि मेरा अपमान हुआ है। मैं कार में बैठकर ससुराल जा रही थी, बाबा भी मेरे साथ बैठे थे, वे मुझे ससुराल छोड़ने आए थे। उतरते समय मैंने उसी क्रोध की लहर में कहा, बाबा आप कार नहीं भेजना, मैं कल नहीं आऊंगी। तब बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची क्या तुम जान सकती हो कि कल क्या होगा? मैंने कहा, आखिर कल होगा क्या, कल देखेंगे। ससुराल में पहुंचकर मैं रात्रि को सो गई। कोई 2-2.5 बजे होंगे कि अचानक ही मैंने देखा कि बहुत तेज लाइट है और पास बाबा खड़े हैं। मैं जग गई। मैंने सोचा कि रात्रि को मैं बाबा से बात करके लौटी थी, शायद इसी कारण से बाबा मन में सामने आ रहे हैं। परंतु कुछ ही समय बाद मुझे फिर वही साक्षात्कार होने लगा। मैं समझ नहीं सकी, मैं फिर सो गई। तीसरी बार मैं फिर देखा कि मेरे सामने बाबा खड़े हैं और उनके साथ ही श्री कृष्ण खड़े हैं, और बाबा बहुत ही आकर्षणमय रूप से मधुर स्वर से कह रहे हैं, बेटी जागो, तुमको विश्व के कल्याण का कार्य करना है। बस ये महावाक्य एक दिव्य बाण की तरह था जो मेरे मन को अच्छी तरह लग गया। मैंने तुरंत ही बाबा की अंगुली पकड़ ली। उसी क्षण मुझे अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन अनुभव हुआ, और ना चाहते हुए भी मेरे मुख से ये शब्द निकल पड़े, बाबा आप में तो सचमुच भगवान हैं, हमने आपको नहीं जाना था, अब से लेकर आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्रातः होते ही ये दिव्य दृश्य बार बार मेरे सामने आने लगा और मेरे मन में ये ईश्वरीय आकर्षण बना रहा कि बाबा से जाकर मिलूं। मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगी, परंतु मुझे शारीरिक कष्ट ऐसा हुआ कि मैं जाना चाहते हुए भी नहीं जा सकी। तब मुझे बाबा के ये शब्द याद आए, बेटी कल क्या होता है वो देखा जाएगा। ये शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे और मैंने सोचा कि हम बाबा के साधारण रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक पहचान नहीं पाते हैं। उन द्वारा जो शक्ति कार्य कर रही है उसे हम जान नहीं पाते हैं। सायंकाल को बाबा स्वयं ही मेरे पास आ गए। बस उन्हें देखते ही मेरी आंखों से प्रेम के, पहचान के और पश्चाताप के आंसू बहने लगे, और उनसे गले मिलकर मैं बोल उठी, बाबा अब मैंने आपको पहचान लिया है, अब जो कुछ भी कहेंगे सो मैं करूंगी जरूर। बस उस दिन से मेरे जीवन को एक नया मोड़ मिल गया। ऐसे अनेक अनेक आत्माएं बाबा के पास आई और जीवन को परिवर्तन होते हुए उन्होंने देखा। ऐसे धीरे धीरे बाबा के परिवार वाले, बाबा के सगे संबंधी और समाज के अलग अलग लोग बाबा के पास आए, ओम मंडली में ओम ध्वनि कर रहे थे, और अलग अलग प्रकार के साक्षात्कार करने लगे थे और धीरे धीरे सभी को ये एहसास भी होने लगा था जो भी साक्षात्कार हो रहा है वो परमात्मा के कृपा से परमात्मा की इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है और धीरे धीरे परमात्मा का परिचय भी सबको प्राप्त होने लगा। ऐसे लगभग 350 भाई बहने बाबा के पास आए और ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने लगे। इसमें ज्यादातर कन्याएं और माताएं थी और कुछ भाई थे। सभी एक अलौकिक नशे में अलौकिक प्राप्तियों में झूम रहे थे और अपने अंदर एक अलौकिक परिवर्तन को पा रहे थे। इन्हीं शब्दों के साथ अभी इसको पूरा करते हैं, फिर कल कुछ और प्रेरणादायी प्रसंगों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। ओम शांति।
खुशियां सारे संसार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की आज भी देते हो बाबा, पालना साकार की।
घर की